पूर्वान तारीख 10 नवंबर षटकार प्रवचन बेल हो सिद्धे ओम जन्मजन्मिदे तेन विधानेन जन्मकालमि नादं जिनेन नियदं जन्मकालं तन्तस्सतमिदे से तेन विहानेन तं निकालम् कोसत्कदिवारेदुम् इन्दो वातरिन्दो वा एवं जो निश्चयतो जानदि दौवाणि सौवपश्चाये सोऽसत्तिष्ठि सुखो जो संकटितो भूतिष्ठि को जैसा है वैसा जानना है और ये जो प्रत्येक जगह की जो प्रत्येक परिवार उसके स्वयं के कारण वो समय पर उसके कारण फिर ये ऐसा जानकर किसी पर वस्तु के कारण पर द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य की पर्याय बदलती है इसके लिए और कार्य व्यवस्था को जानना जरूरी है क्योंकि जब तक ये कारण संबंध विशेषता दूर नहीं तब तक ये ज्ञान सही नहीं होगा जब तक ज्ञान सही नहीं होगा तो भावना के साथ कंफ्यूजन के साथ समय दर्शन हो जाए ये बात नहीं हो सकती जहां तक लोगों के बारे में दूसरों की व्यवस्था के बारे में थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन है आत्मा का अनुभव होना ये बात सही नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही जानना है और सही जानना उसका स्वभाव तो जब इसके जो अन्य अन्य जो अभी हम विषय अलग अलग देख रहे हैं उनके बारे में जब तक निर्णय नहीं सही होता है तब तक उसको उस समय ज्ञान तक पहुंचने का भी रास्ता इसलिए इन सभी सिद्धांतों की हम अभी अपना षटकारक का विषय चल रहा है षटकारकों के नाम याद है नीला बेन आप पढ़कर बताओ चलेगा हाँ
श्रद्धा कारक
हाँ
कर्म कारक
हाँ
करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक
बहुत अच्छा तो इस पर पहले तो हमने दृष्टांत से लौकिक में हम जो अन्य द्रव्य करता है कोई अन्य उसका कार्य है कोई अन्य साधन है अन्य संप्रदान है अन्य उपादान है अन्य अधिकरण इसको हमने भिन्न कारक कहा था और ये व्यवहार कारक है ये झूठे है तो कहते वस्तु स्थिति रियलिटी ऐसी नहीं है तो ऐसी नहीं है तो सच्चे कारण क्या है सच्चे कारक कौन से तो कहते हैं कि द्रव्य में ही ये छह कारक द्रव्य में ही विद्यमान होते हैं द्रव्य ही स्वयं करता है द्रव्य ही अपने पर्याय रूप से परिणमता है द्रव्य ही कर्म है द्रव्य ही अपना साधन है वही अपना संप्रदान है वही अपना अपादान है और वही अधिकरण है यानी ये वो कारक द्रव्य में ही विद्यमान होते हैं वो अभिन्न कारक है हम पढ़ेंगे हिंदी 97 है और गुजराती प्रवचन गाथा स्टोर वहां से हम पढ़ेंगे प्रवचन सार गाथा 16 के भावार्थ में कहा है कि वस्तु स्थिति देखने 97 वस्तु स्थिति का अर्थ क्या है रियलिटी परमार्थ दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो नहीं सकता किसी पर्याय का कर्ता या किसी पर्याय को हर्ता है नहीं उसको नष्ट करने वाला ये दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता इसलिए ये व्यवहार छह कारक असत्य है और उनको कारक कहना औपचारिक कथन है, कहने मात्र के लिए है, ऐसी तो वस्तु स्थिति है नहीं। तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार कारक असत्य है तो फिर सत्य कारक यानी निश्चय कारक कौन से हैं? तो हमने सुबह उसको घड़े के उदाहरण पर देखा कि मिट्टी स्वयं परिणमित होकर घड़ा रूप परिणमित होती है तो मिट्टी स्वयं करता है, मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है तो मिट्टी ही या घड़े का कर्ता कहो या घड़ा उसका कर्म कहो या घड़ा और मिट्टी अभेद कहकर मिट्टी ही मिट्टी का कर्म ऐसा भी कह सकते हैं। तो मिट्टी ही कर्ता हुई, मिट्टी ही कर्म हुई, तो मिट्टी उसके अपने स्वयं परिणमन स्वभाव द्वारा मिट्टी ने ही घड़ा बनाया, स्वयं परिणमित हुई तो ये मिट्टी स्वयं ही अपना साधन। ये तो अभी हम मिट्टी पर घटित करते हैं वायु वस्तु पर, तो ये सारे हम अपने पर घटित करेंगे। तो मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म स्वयं को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान। अब किसमें से क्या हुआ, तो मिट्टी ने स्वयं पिंड रूप अवस्था को नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया और वह स्वयं ध्रुव रही। ये कौन सा सिद्धांत है जो हमने कभी सुना होगा, क्या है? एक अवस्था को नष्ट करके दूसरी अवस्था बनाई और स्वयं ध्रुव रही। हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत सत, ये हरेक द्रव्य का लक्षण है, वो स्वयं में ही पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद रूप होकर परिणमित होता है। द्रव्य स्वयं ध्रुव रहते हुए हर समय उसका उत्पाद व्यय चलता है, ये उसकी अपनी अवस्था अपने में अपने कारण से होती है। इसलिए मिट्टी स्वयं ही अपादान, अपने में से कार्य हुआ ना उसमें, और फिर मिट्टी ने स्वयं के आधार से घड़ा किया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही अधिकरण है। यानी इस तरह से छह कारक यहाँ हमने घड़े के उदाहरण पर मिट्टी पर घटित करके देखे। इस प्रकार छह कारक अर्थात अभिन्न कारक, पहले जो हमने अन्य अन्य पर घटित किए थे ना, कुम्हार कर्ता घड़ा कर्म, वो भिन्न कारक कहा था, और ये कैसे अभिन्न कारक है, एक ही द्रव्य में उसकी अपनी पर्याय होती है तो वो छह के छह कारक उसी द्रव्य में विद्यमान रहते हैं। तो ये अभिन्न कारक एक ही द्रव्य में, कौन से एक द्रव्य में, जीव द्रव्य में कि पुद्गल द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में, छह द्रव्य में, छह द्रव्य में, एक ही द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने होते हैं। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहाय नहीं कर सकता, द्रव्य स्वयं ही, अभी ये छह कारक फिर बताए, स्वयं ही यानी वो करता हुआ, स्वयं को क्या किया, स्वयं को किया उसने तो ये कर्म हुआ, स्वयं द्वारा करण यानी साधन हुआ, स्वयं के लिए संप्रदान, स्वयं में से ये क्या हुआ अपादान, और स्वयं के आधार से अधिकरण, कार्य करता है, इसलिए ये निश्चय कारक ही परम सत्य है। ऊपर हमने पढ़ा था ये व्यवहार कारक असत्य कथन मात्र के लिए, तो सत्य क्या है, ये जो निश्चय कारक हमने देखे प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने छह कारक है, तो ये परम सत्य है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से, हमने अपने को परिपूर्ण माना कि पूरा ही पराधीन मान लिया, तो ये प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिपूर्ण है, सेल्फ सफिशियंट है, और अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से स्वयं ही षटकारक रूप होकर स्वयं का कार्य करने में समर्थ है। ये सभी वाक्य नहीं है, ये तो अपने ग्रंथों में से आगम में से लिए हैं। क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से स्वयं ही षटकारक रूप होकर स्वयं का कार्य करने में समर्थ है। यानी वो स्वयं ही कार्य करता है, अन्य कोई द्रव्य आकर इसका कार्य करे ऐसे किसी अन्य द्रव्य में शक्ति नहीं। अब प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत शक्ति है कि अपना अपना कार्य, और किसी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है कि थोड़ा जाके दूसरे का कार्य कर दे। हम जो लौकिक में दूसरे को मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए आदि, वो ये तो औपचारिक, उसमें बाह्य सामग्री किंचित मात्र मदद नहीं कर सकती। हमारी मान्यता में हमने कोई परद्रव्य आकर हमका हमारा कुछ कार्य कर देगा, ऐसे हमने पराधीन बुद्धि रखी है, क्योंकि हमें इन कारणों की कुछ पता ही नहीं था ना, गंध ही नहीं थी इनकी। अब कहते ये छह कारक प्रत्येक समय में रहते हैं, ऐसा क्यों कहा होगा प्रत्येक समय में रहते हैं?
एक समय
बहुत अच्छा पर्याय, एक समय की और हर समय नई नई पर्याय हो रही है, तो ये हाँ वो प्रत्येक समय में छह कारक विद्यमान है। तो आगे का प्रश्न है, ये कारक है क्या, द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? तो छह कारक सर्व द्रव्य में पाए जाने वाले सामान्य गुण है, और वो परिणमित होगी तब हम पर्याय के षटकारक कहेंगे। ये है तो सभी द्रव्यों में है, कर्ता कर्म करण, वैसे आत्मा की 47 शक्ति आपने सुनी होगी, यह हुआ कि सब्जेक्ट नहीं हुआ?
नहीं हुआ,
नहीं हुआ।
लिख दिया था ना?
हाँ हाँ आपने सुना है ना।
हाँ
ये जो जीवत्व चिति दृषि ज्ञान सुख वीर प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व स्वच्छत्व प्रकाशत्व असंकुचित विकासत्व अकार्य कारणत्व परिणम में परिणामकत्व त्यागोपादान शून्यत्व अगुरु लघुत्व उत्पाद ध्रुवत्व परिणाम शक्ति अमूर्तत्व अकर्तृत्व अभोक्तृत्व निष्क्रियत्व अनियत प्रदेशत्व स्वधर्म व्यापकत्व साधारण असाधारण धर्मत्व अनंत धर्मत्व विरुद्ध धर्मत्व तत्व अतत्व एकत्व अनेकत्व फिर भाव अभाव भाव भाव अभाव भाव 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 अभाव भाव भाव शक्ति क्रिया शक्ति अभी इसके आगे फिर कर्म शक्ति कर्तृ शक्ति करण शक्ति संप्रदान अपादान अधिकरण और लास्ट में स्वस्वामित्व संबंध शक्ति कहते हैं। तो ऐसी ये 47 शक्तियों में 6 शक्तियां ये ली है, वहां तो आत्मा की कहकर बताई है, परंतु ये तो सामान्यपने सभी द्रव्यों में है। कौन से? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। ये जो 6 शक्तियां हैं ये कारक गुण रूप से है, तो ये गुण रूप कारण उनका परिणमन भी होगा ना। आपने जो कहा ना ये पर्याय है, तो ये गुण भी है और पर्याय है, तो गुण के बिना तो नहीं होगी, तो इसी नाम के गुण है और उनका ये परिणमन भी चलेगा हर समय में। तो कहते ये 6 कारक सर्व द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुण है, क्योंकि सामान्य गुण हमें उसी को कहते जो सभी में अपने अपने गुण पाए जाते हैं एक जैसे। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में वे पाए जाते हैं। आगे लिखा है समय सार ग्रंथ में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन आता है, उसमें भी ये 6 शक्तियां बताई है, कर्तृ शक्ति कर्म शक्ति करण शक्ति संप्रदान शक्ति अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति। शक्ति ने वहां गुण के अर्थ में लिए है, और उसका परिणमन होगा तो उसको हम कहेंगे इसका ये निर्मल परिणमन चल रहा है। 6 कारक गुण है और उनका भी परिणमन निरंतर चलता रहने से, ये गुणों का परिणमन निरंतर क्यों चलता है? ऐसी कोई शक्ति है द्रव्य में? हाँ द्रव्य है, उसके कारण प्रत्येक गुण निरंतर परिणमन। ये 6 कारक ये गुण है शक्तियां है, इनका भी निरंतर परिणमन करते। प्रत्येक पर्याय में नए नए पर्याय रूप 6 कारक पाए जाते हैं। द्रव्य में तो गुण रूप 6 कारक है, और प्रत्येक पर्याय में इन गुणों की जो पर्याय चलती है, तो प्रत्येक पर्याय के अपने अपने पर्याय रूप षटकारक होंगे, क्योंकि हर पर्याय अलग अलग भी हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, कभी मिथ्यात्व रूप चल रहा है तो कभी सम्यक दर्शन हुआ, ये पर्याय अलग अलग हो रही है कि नहीं, पर्याय में कुछ विविधता भी होती है। तो ये कारक तो द्रव्य समान कायम एक सदृश है, तो ये जब परिणमित होते हैं तो प्रत्येक पर्याय के अपने वो पर्याय रूप षटकारक हो जाए। हमने पहले एक बात देखी थी, प्रवचन सार में बताया था कि शुद्ध पर्याय के और अशुद्ध पर्याय के भी अपने अपने स्वतंत्र षटकारक है, यानी विभाव में भी द्रव्य स्वतंत्र है, किसी दूसरे ने उसको विभाव कराया ऐसा नहीं है, और शुद्ध पर्याय हो जाए तो भी वो द्रव्य के अपने या उस पर्याय के अपने षटकारक वहां विद्यमान है। यही बात यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट तो शास्त्रों में ऐसे षटकारक के वो क्या कारक समूह ऐसा कुछ उसको शब्द आया है समय सार में, तो उसका हमें अर्थ नहीं भाषित होता है जब तक हमें विस्तार से इस विषय का ज्ञान न हो, क्योंकि ग्रंथों में केवल उसका उल्लेख करके आगे बढ़ते हैं, परंतु उसमें जो गंभीर उसकी सूक्ष्मता है वो ख्याल में नहीं आती। तो यहाँ क्या कहते देखो, फिर हम पढ़ेंगे इसको कि छह कारक गुण है, उनका भी परिणमन निरंतर चलता रहने से प्रत्येक पर्याय में नए नए पर्याय रूप छह कारक पाए जाते हैं। नए नए कारक क्यों कहा, क्योंकि वो भी पर्याय है, इसमें भी अलग अलग निरंतर परिणमन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न है और स्वतंत्र है, भिन्न है अलग है पृथक है। इसलिए तो पहले वाले भिन्न कारक कहे वैसा नहीं है, पहले तो हमने द्रव्य और पर्याय को अभेद गिनकर द्रव्य के षटकारक बताए, तो द्रव्य के षटकारक हमने गुण रूप बताए, परंतु प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, विविध प्रकार की होती है, तो इन षटकार जो गुण है उनका जो परिणमन होता है उस पर्टिकुलर समय, तो पर्टिकुलर जो पर्याय है उसमें वो पर्टिकुलर पर्याय रूप षटकारक अपने वो स्वतंत्र है पर्याय, उसका अपना स्व समय भी निश्चित है, और उस समय वो पर्याय रूप षटकारक भी उसके अपने पाए जाते हैं। अनेक लोगों का प्रश्न है कि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध होने पर पर्याय अशुद्ध किस प्रकार हो सकती है, ये प्रश्न आपके भी मन में कभी आया होगा या ऐसे लोग पूछते भी है। द्रव्य अनादि से शुद्ध है, गुण तो त्रिकाल शुद्ध होता ही है, तो पर्याय अशुद्ध कहाँ से आ गए। उस प्रश्न का उत्तर अब ख्याल में आएगा, प्रत्येक पर्याय के स्वतंत्र स्वयं के षटकारक भिन्न होने से यानी जुदे जुदे होने से पर्याय तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती है। ये तत्समय की योग्यता रूप जो धर्म है वो द्रव्य में विद्यमान, द्रव्य हम उसी को कहते हैं कि अनादि अनंत पर्यायों का समूह है वो, और किस समय किस पर्याय रूप से परिणमना ये द्रव्य में ही हुआ धर्म विद्यमान, और ये पर्याय भी स्वतंत्र रूप से अपने षटकारकों से उत्पन्न होती है, क्योंकि उस समय वैसे ही वो कारकों का परिणमन हुआ है। यानी कितनी स्वतंत्रता बताते हैं और वो पर्याय की कितनी सुनिश्चितता है, इसको अपने प्लेस से कोई बिगा नहीं पाता। ये पर्याय हटाकर कोई दूसरी लावे ये विकल्प ही बेकार का, यानी हम तो ला नहीं सकते, केवल विकल्प ही करते, क्या करते हैं, हाँ करने धरने का सोचते रहते, संकल्प विकल्प जिसको कहते वो विकल्प, वो ज्ञान वाला विकल्प नहीं लेना है। रहते हाँ कोई पर्याय हटाने की या जुटाने की कोशिश जो करते, हमारे विचारों में ही चलते, कल्पनाओं में हम रमते हैं और उस कल्पना में हम कोशिश करने की सोचते हैं, परंतु ये हमें जब निश्चित हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य अनादि से विद्यमान है, और द्रव्य हम उसी को कहते जो गुणों का पिंड है, और वो गुणों का अपना अपना परिणाम स्व समय पर निश्चित है, तो हमारे ये विकल्प कितने बेकार के है। ना हमें अपने कुछ पर्यायों को चेंज करना है, कर सकते ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं द्रव्य सीक्वेंस जो है पर्याय की वो निश्चित है अपने में। हम इसको नहीं समझते हैं, एक तो मूल में भूल क्या है, हम कौन है ये मालूम नहीं है, शरीर मैं हूं और फिर ये इसकी पर्याय वो मेरी पर्याय, इसको मैं चेंज करना, इसी में हम लीन रहे, ये विपरीतता ही विपरीतता चल रही। जब तक श्रद्धा और ज्ञान की विपरीतता चलती है इसको हम मिथ्या तो कहेंगे, अंदर मिथ्या तो रख दिया और ऊपर से हमने कुछ आचरण में सुधार कर दिया जिसको अमृता भी कहेंगे, तो हमारी वो मूल मिथ्या मान्यता तो अंदर रही, वो तो पनपती रहती है, और क्यों हमने मान लिया कि हम कुछ आगे बढ़ गए। इसलिए मूल में सुधारा कहाँ करना है, तो ये विपरीतता होगी तो ये ज्ञान करने से वो विपरीतता दूर होगी, और विपरीतता दूर होगी तो सहज रूप से वहा वैसे ही आचरण होगी, उसको फिर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती कि अभी ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल होता ही नहीं है, ये सहज रूप से है ना। ये पूरा मोक्ष मार्ग सहज है क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है और हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये मार्ग सहज रूप से ऐसे ही होता है। यानी कहीं किसी को अपने आप पर जबरदस्ती नहीं करना, अभी मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना, अभी ऐसे ये करना मुझे योग्य नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। ये सहज रूप से ये सुमेल होता है उसमें आपस में। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न होने से पर्याय तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती ही लगाया। परंतु अभी हमारी क्या भूल हो रही है, हम किसी कार्य के लिए पर पदार्थों को जिम्मेदार मानकर उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। कोई कार्य बिगड़ गया तो किसने किया, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे द्वेष शुरू होता है, और किसी कारण किसी ने किया, हमें इष्ट था वो कार्य, तो उस प्रति हमें राग हो जाता है। ये राग द्वेष भी स्वयं के षटकारकों से उत्पन्न होते हैं, पर पदार्थों के कारण नहीं। यानी ये जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो भी द्रव्य के अपने उस पर्याय के स्वयं के षटकारक से वहां उत्पन्न हो रहे हैं। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है इसलिए भी नहीं, शास्त्र में तो कथन आएगा कि आप परद्रव्यों को निमित्त मान रहे हो, ये बच्चे ने काम ऐसा हमारा सुना नहीं इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो देखते वो नहीं है, निमित्त भी ढूंढना है, तो चारित्र मोहनीय का उदय है यहाँ राग द्वेष है। तो कहते ये निमित्त से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्म के अपने षटकारक कर्म में है और जीव के अपने षटकारक जीव में है, तो जीव स्वयं उस राग द्वेष रूप परिणमित हुआ है, ये अशुद्ध उसका कार्य चल रहा है, वो उस अशुद्ध पर्याय के भी स्वयं के अपने षटकारक, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी, यानी जीव के भाव और यहाँ चारित्र मुनि का उदय में कैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो निमित्त रूप से विद्यमान है परंतु निमित्त इसको जबरदस्ती राग द्वेष, यानी किसी कर्म ने हमारे ये राग द्वेष उत्पन्न करा है, ऐसा है नहीं, जीव स्वयं करता है उस रूप पर बनता है, तो सामने वो विद्यमान है, बस इतनी बात। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपने पर्याय के साथ हो सकता है, अन्य द्रव्य के पर्याय के साथ कभी नहीं। तो जहाँ दो द्रव्यों के मिलकर बात आती है, जीव ने कर्म, यहाँ ध्यानाग्नि द्वारा कर्म को जलाया, ऐसे जहाँ कोई भी वाक्य आता है तो उसमें ये व्यवहार कथन है कि निश्चय है, और उसमें भी हमने ध्यानाग्नि द्वारा कर्म को जलाया, और उसमें षटकारक लगाए तो हम भिन्न कारक लगाए, क्योंकि ध्यान तो जी में हुआ और कर्म तो अपने में जल गया। तो जब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और उसके पीछे हमें उसका रहस्य मालूम है कथन का, तो उसमें से सही अर्थ निकालने की ये ट्रिक हमें, क्योंकि आचार्य को इतनी क्या होती है कि एक वाक्य में सब सारा ये निश्चय है या व्यवहार ऐसा करिए, उनका तो नए से ही कथन होता है, कौन सा नए है और उस नए का अर्थ कैसे निकालना, ये तो हमें आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। समय सार कलश 49 में कहा है कि व्याप्ते व्यापक भाव हुए बिना कर्ता कर्म स्थिति हो नहीं सकती। अब ये व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है, हाँ व्याप्ते व्यापक भाव एक ही द्रव्य में पाया जाता है, द्रव्य का और पर्याय का अपने में व्याप्ते व्यापक भाव है, तो जहाँ व्याप्य व्यापक भाव है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध हो सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो व्यापक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्वचतुष्ट है जो भिन्न भिन्न है, कोई एक दूसरे में एंटर ही नहीं कर सकता, तो एक द्रव्य दूसरे में जाकर व्यापे ऐसे हो ही नहीं सकती, के द्रव्य और दो द्रव्यो में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं हो सकता, यहाँ बताए। आगे के देश बड़े नाम से घबराना मत, उसका अर्थ समझते ही व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है उसको आगे समझाया है। जो अपनी सभी अवस्थाओं में व्यापता है वह व्यापक और उसकी विशिष्ट अवस्था उसका व्याप्य है। क्या कहा? व्यापने वाला कौन? द्रव्य। किसमें व्यापता है? तो अभी सभी अपने अवस्थाओं में। प्रत्येक द्रव्य अवस्था बिना का तो है ही नहीं, अनादि से लेकर अनंत काल तक उसकी एक एक समय पर एक एक अवस्था चल रही है। गुणों की अपेक्षा कहेंगे अनंत गुण है, उसकी अपनी अनंत अवस्थाएं चल रही है। तो द्रव्य अपने इन सभी अवस्थाओं में व्यापता है, फैलता है, उसी में रहता है और वो अवस्था क्या है उसका व्याप्य। ये द्रव्य के द्वारा व्यापी जाती है इसलिए उसको व्याप्य कहा। अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। मिट्टी व्यापक है और घड़ा तथा अन्य पर्याय उसका व्याप्य है। मिट्टी की हमें जो जो अवस्थाएं, पहले तो ऐसी ड्राई मिट्टी पड़ी थी, फिर उसका हमने वो पिंड बनाया, फिर उसको कुछ आकार दिया, उसको स्थास वगैरह कहते रहा, और फिर उसके वो घड़ा बना और घड़े के बाद उसके वो तो टुकड़े टुकड़े हो गए, टिकरे हो गए। तो इन सभी अवस्थाओं में कौन व्याप रहा है? तो मिट्टी। मिट्टी ही उस पर्याय रूप से हो रही है तो मिट्टी व्यापक है और ये सभी अवस्थाएं उसका व्याप्य है। मिट्टी व्यापक है और घड़ा तथा अन्य पर्याय उसका व्याप्य है। द्रव्य और पर्याय अभेद होने से, ये तो समझाने के लिए और समझने के लिए हम उसके द्रव्य गुण पर्याय फिर एक एक समय की पर्याय से अलग अलग करके समझाते हैं, परंतु पर्याय तो द्रव्य का ही अंग है, उसका ही स्वरूप है। तो कहते द्रव्य और पर्याय अभेद होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्ता है यानी प्रसरता है और पर्याय द्रव्य द्वारा व्यापी जाती है। ये कथन का है, स्टेटमेंट या कथन दो प्रकार से होते हैं। राम ने आम खाया और राम के द्वारा आम खाया गया, कहने की दो पद्धतियां हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि द्रव्य पर्याय में व्याप्ता है और पर्याय द्रव्य द्वारा व्यापी जाती है इसलिए उसको व्याप्य कहा। ऐसा यह व्याप्य व्यापकपना अभिन्न सत्ता में, यानी जिनकी सत्ता अभेद है, अभिन्न है, एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, ऐसे द्रव्य और उसकी पर्याय में होता है, दो भिन्न द्रव्यों में नहीं होता। मिला बिन ख्याल में आ रही बात? द्रव्य अपने पर्याय में व्यापता है। ये बंगड़ी है, ये बंगड़ी में कौन व्याप रहा है? तो सोना। सोना अपने वो बंगड़ी रूप पर्याय में व्यापक है। अब ये बंगड़ी पर्याय का अवस्था का नाश होकर हार बनाया उसका, तो सोना ही उसमें व्यापक है। तो सोने की जो जो अवस्थाएं अलग अलग होगी उन सभी में व्यापने वाला कौन है? तो सोना। तो इन पर्यायों का कर्ता कौन है? तो हमें तो लगता है सोनी ने, वो कारागिर ने ये हार बनाया, फिर उसने उसको तोड़कर उसका कुंडल बनाया। तो कहते सोना ही इन सभी में व्यापक है, तो सोना ही इनका करता है। ख्याल में आई बात? हमारी जो जो चीजें हमारी पहचान वाली उसमें ये ऐसा ही हमें सोचना है। जहां जहां व्याप्य व्यापक भाव होगा, यानी द्रव्य और पर्याय में होता है ना, व्याप्य व्यापक भाव द्रव्य पर्याय में अपने में होता है, वहीं पर कर्ता कर्म भाव संभवता है, यानी होता है। यानी कर्ता कर्म भाव कहाँ पर होता है? द्रव्य का अपने पर्याय के साथ। व्याप्य व्यापक भाव बिना कर्ता कर्म भाव हो नहीं सकता। पुद्गल द्रव्य उसके अपने पर्यायों में व्यापक है और जीव द्रव्य अपने स्वयं के पर्यायों में व्यापक है, परंतु जीव व्यापक और शरीर व्याप्य यह बात तीन काल में नहीं हो सकती। यानी आत्मा ये शरीर में व्याप्त हुआ है, ये कथन ये तो सही कथन नहीं है। ये देह प्रमाण है, जिस आकाश के प्रदेश में आत्म प्रदेश वहां जीव द्रव्य रहता है, वहीं पर ये शरीर भी, शरीर के परमाणु भी वहीं पर स्थित है, इतना मात्र उनमें वो संबंध है। परंतु जीव शरीर में घुस गया हो, व्याप्त हो गया, ये बात नहीं होती। दोनों की सत्ता जुदी जुदी है, एक सत्ता दूसरी सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए कहते उनको ये व्याप्य व्यापक संबंध है नहीं। तो जीव व्यापक और शरीर व्याप्य, यह बात तीन काल में नहीं हो सकती। समय हो गया, अभी मैं रुकती हूँ। कोई भी द्रव्य अपना स्वचतुष्टय छोड़कर परचतुष्टय में प्रवेश ही नहीं कर सकता, यानी परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव में व्याप नहीं सकता। अभी इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे फिर से दोबारा, क्योंकि व्याप्य व्यापक और ये बातें बहुत सारी आती है, समय सार में भी इसकी चर्चा आती है, तो वो जीव पर भी हम घटित करके कर देखेंगे। यही रुकेंगे हम। चौबीसो भगवान।